ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को जब अपना ऊंचा साक्षात्कार हुआ कि मुझे चतुर्भुज बनना है, तो बस उसी आधार से ही बाबा ने अपनी जीवन समर्पित करके यज्ञ की स्थापना की। मम्मा को उस तरह से ट्रांस का साक्षात्कार नहीं रहा, परंतु दिव्य बुद्धि जो शिव बाबा ने दी, उस आधार पर मम्मा ये जानने लगी कि मुझे तो लक्ष्मी बनना है। तो उस विजन से, उस साक्षात्कार से मम्मा और आगे बढ़ती गई, और वो तो सब आप कहानी जानते हैं। परंतु एक और बात विजन्स के संबंध से मुझे बतानी है, ये है जब बाबा के 20 तारीख की मुरली चल रही थी, 20 जनवरी 86, जो 2 सप्ताह पहले अव्यक्त रिविजन कोर्स मुरली सुनी, उसमें बाबा ने जो गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली वाले आए हुए थे, उनको बाबा बहुत कुछ कह रहे थे अपने जीवन परिवर्तन की बातें भी, परंतु साथ साथ बाबा कहते थे कुछ नई बात करो। और उस समय बाबा ने विदेश में कई आत्माओं को टच किया, जिससे एक बिल्कुल नया कार्य शुरू हुआ, जिसका नाम था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कार्य था बाबा के यज्ञ में, और उस प्रोजेक्ट ने यूएन के संबंध से 7 30 मैसेंजर अवार्ड्स लिए। एक इंटरनेशनल जो दादी प्रकाश मणि न्यूयॉर्क में आकर के खुद पर्सनली ली, और 6 और देशों के, यूके, ब्राजील, ट्रिनिडाद, कोस्टारिका, इस प्रकार से 6 और देश थे जिनों को भी मिला। परंतु उसके बाद में जो यूएन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आए थे आबू में 87 में, उन्होंने विशेष दादियों को कहा कि हमें कुछ और आगे का पीस मैसेंजर प्रोजेक्ट करना होगा। तो हम लोग तो तन मन से थके हुए थे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्या होता पहले तो जानते भी नहीं थे, परंतु ड्रामानुसार बाबा को करना था, करा लिया। फिर आखिर ये टॉपिक निकला, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, और उसमें यहाँ भारत में उसका नाम रखा गया सर्व के सहयोग से सुंदरमय संसार। तो उसमें हम लोग विजन्स की बात को उठाते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, और उसमें 3 प्रश्न पूछे जाते थे, 6 का ग्रुप, 8 का ग्रुप मैक्सिमम इस तरह से होता था, ताकि लोग अच्छी तरह से आपस में डिस्कस कर सके। तो पहला प्रश्न था कि बेटर वर्ल्ड के लिए आपका क्या विजन है, उस वर्ल्ड में क्या होगा। फिर दूसरा था, ऐसे सुंदर संसार में आपके संबंध, आपसी संबंध किस प्रकार से होंगे, उसका विजन बताओ। और तीसरा प्रश्न था, आप खुद अपने लिए क्या समझते हैं कि ऐसे बेटर वर्ल्ड में आपकी स्थिति किस प्रकार से होंगी। तो अप्रैल 88 से लेकर 1990 तक ये प्रोजेक्ट चला, और 128 देशों में प्रोजेक्ट पहुंच गया। करीब करीब उस समय विश्व का जो नक्शा था, उस हिसाब से जो भी देश 1 मिलियन के आबादी से ज्यादा थे, सब देशों में पहुंच गया। ये भी कहेंगे बाबा की कमाल, क्योंकि हम लोगों को तो इतना पता ही नहीं था कैसे प्रोजेक्ट्स करें, परंतु ये भी हो गया। परंतु मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि जब ये विजन्स बताते थे, और जब हम लोगों ने सारा छान छून करके इकट्ठा किया, फिर वो बुक छपा विजन्स ऑफ बेटर वर्ल्ड, तो उसमें ग्लोबल विजन था कि सारे विश्व के लिए विजन क्या है। तो उसमें सारा था वैल्यूज का. कोई लव के लिए कह रहा, कोई रिस्पेक्ट के लिए कह रहा, कोई ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सब जो भी मूल्य है, गुण है, उन सभी को लेकर के सब वर्णन कर रहे हैं. अच्छे संसार के लिए कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको बड़ा मकान चाहिए, हमको सोने जेवर चाहिए, नथिंग. सब का जो भी निकलता था वो वैल्यूज के संबंध से ही निकलता था. तो आज जब हम ये सोचते हैं कि धरती को हम स्वर्ग बनाएं, तो उसमें भी यही बात आती है कि जो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के मूल्य है, जो भी वो मर्यादाएं हैं, आज जबकि हम वो अपने लिए समझेंगे कि मुझे ऐसा बनना है अथवा वो विजन मेरे सामने है, तो हम अपना मन, वचन, कर्म उस अनुसार बनाएंगे जो फिर हम वहां तक पहुंच सके. तो आजकल बाबा जो कह रहे हैं, साकार मुरली में भी आ रही है, अव्यक्त मुरली में भी ये बात आ रही है कि आपका जो लक्ष्य है संगम युग का, वो है फरिश्ता बनना. फरिश्ता बनेंगे तो फिर फरिश्ता सुदेवता. तो देवता जब शब्द आता, बाबा याद ला रहे हैं कई बारी कि लेने वाले नहीं बनना है, परंतु देने वाले बनना है. देवता, देवता बनेंगे तो फिर तो उसका अलग हिसाब है. देने वाले बनेंगे तो फिर उसमें देवता के गुण अथवा लक्षण नजर आएंगे. तो पहले तो अपने से ये प्रश्न पूछे कि क्या हम समझते हैं कि हम फरिश्ते बनने वाले हैं. और यदि उससे ये आवाज निकलता कि हाँ, हम कल्प पहले वाली वो ही फरिश्ते हैं जिन्हों का यादगार विश्व भर में चला आ रहा, कि अंतिम घड़ियों में बाइबल में दिखाते हैं कि अंत समय सफेद वस्त्रधारी पहाड़ से उतरेंगे और वो आकर के मानव को भगवान का संदेश देंगे. तो कौन सा पहाड़, कौन से सफेद वस्त्रधारी, वो तो आप समझ गए. परंतु प्रश्न है कि कहाँ तक हम अपने को मानते हैं कि हम वही फरिश्ते हैं, हम वही सो देवता बनने वाले हैं. तो जब बुद्धि में ये अपना पक्का विश्वास होगा, जैसे बाबा ने उसी मुरली में ही कहा कि ऐसे भी नहीं कि आप समझते हो कि हाँ स्वर्ग जरूर आएगा, आप ये मान करके चल रहे हो कि हुआ ही पड़ा है. जो बाबा ने साक्षात्कार कराया है भविष्य का, वो हुआ ही पड़ा है, इतना आपका निश्चित भावी में विश्वास है. बाबा शब्द बहुत अच्छे कहे, निश्चित भावी. कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, ये तो होना ही है. या तो ये भी कहें, हुआ ही पड़ा है. तो उसमें बाबा ने खास विशेष ये बात कही कि जब आपको ये अटल निश्चय होगा, तो फिर आपके जीवन में वो अभी से ही वो देवताएं गुण नजर आएंगे. तो मुझे दो शब्द याद आते हैं जो दादी कई बार हमें याद दिलाती थी. ये भक्ति के शब्द है, परंतु दादी के दिल में ये छपे हुए थे. तो उसमें दादी ये कई बार कहती थी कि अहिंसा है धर्म का मूल. जो मुख्य अपना देवता धर्म है, उसमें अहिंसा का ही मूल गायन आता है. और पिछले साल जब गांधी जी की एनिवर्सरी का बहुत सारे विश्व में मनाया जा रहा था, तो उसमें एक गांधी का स्कॉलर आया था अपने पास और बहुत नजदीक फ्रेंडशिप में आ गया है. और उसको मधु बनाने की भी कई बारी कोशिश की है, परंतु उसके भाग्य में अभी तक नहीं रहा है. अगले वर्ष देखेंगे. परंतु उसने अहिंसा की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी. कहता था कि बहुत करके उसको कहते हैं नॉन वायलेंस, कोई प्रकार की हिंसा न हो. परंतु वास्तव में अहिंसा का मतलब है किसी को हार्म न करें, किसी को कोई प्रकार का दुख दर्द हम न देवें। तो आप सोचो कि ब्राह्मण जीवन में यदि हमें देवता बनना है, और वो तो हम जानते हैं कि वो संसार किस प्रकार का है, बाबा ने बहुत क्लियर नक्शा बता दिया है, और उसमें हम यदि न सिर्फ स्वर्ग के द्वार के अंदर पहुंचे, परंतु ऐसे पुरुषार्थ तभी करें जो हमारा ऊंचा उसमें अपना भविष्य का स्थान हो, और आज के संसार में हम ऐसे बाबा के साथ कार्य में सत्य मार्ग पर चल के ऐसे सहयोगी बन करके रहें जो हम उस स्थापना के कार्य में अच्छी तरह से मदद कर सके। तो उसमें आप सोचो कि किसी के प्रति भी हमारा कोई और प्रकार की भावना न हो, कोई और प्रकार का संकल्प ही न चले। भाव और भावना की भी बातें चल चुकी है, परंतु हमारा इंटेंशन, हमारा किसी के प्रति कुछ गलत न हो, एक ही संकल्प सर्व आत्माओं के प्रति हो, जैसे बाप शिव बाबा कल्याणकारी, वैसे क्या हमारा हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा, विश्व की सारी आत्माओं को याद करो तो उनके लिए वाइब्रेशंस भेजना, मनसा सेवा करना वो सहज है, क्योंकि विश्व की सब आत्माओं के प्रति कुछ हमारा हिसाब किताब तो है ही नहीं। हिसाब किताब अधिक से अधिक है अपने ब्राह्मणों के साथ। क्यों? क्योंकि इन्हीं आत्माओं के साथ हमने सारा सृष्टि का चक्कर में पाठ बजाया है। तो सत्युग त्रेता में तो बहुत सुंदर रास करते रहे, फिर द्वापर कुछ न कुछ खिटखिट शुरू हो गई, और उसमें एक और शब्द दादी हमेशा कहती रहती थी कि भक्ति का शब्द है, परंतु ये शब्द आता पाप मूल अभिमान। तो भक्ति ने ठीक उसका याद किया है कि जिस घड़ी देह अभिमान आया तो पाप होने लगे, और फिर जब हम अपने ब्राह्मणों के संग में देखते हैं कि कुछ न कुछ हमारा हिसाब किताब बाहर वालों के साथ तो छूट ही गया, परंतु ब्राह्मणों के साथ कुछ न कुछ चलता रहा है या कुछ पूर्व का अभी तक चल रहा, तो ऐसे समय पर हम ये सोचे कि क्या बिल्कुल हमारे मन में कुछ और किसी आत्मा के प्रति संकल्प न हो, केवल हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, बस हर आत्मा बाबा के और नजदीक आए, हर आत्मा बाबा से अपना पूर्ण रीति से सुख शांति का वर्षा ले लेवे। तो मुझे याद आता है कि जनवरी मास में अव्यक्त मुरली, वैसे तो साकार मुरली का दिन था, परंतु बीच बीच में पैसेजेस आते थे अव्यक्त मुरली के, अव्यक्त मास था, तो उसमें एक अव्यक्त पैसेज आया था जिसमें बाबा ये हमें बता रहे हैं कि हिसाब किताब चुकतू करके कैसे हम अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें। तो उसमें बाबा का ये शब्द था कि यदि किसी आत्मा के प्रति आपका चिंतन चल रहा है, गुणों का चिंतन, तो फिर आप प्रभावित हो जाएंगे, परंतु उनों को भी गुणवान बनाने वाला बाबा है, बाबा का चिंतन चले, न कि उस मनुष्य का। परंतु उससे अधिक चिंतन चलता है किसी भी आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब चल रहा है तो उनों के प्रति हमारा चिंतन चलता। तो जब हमारा उस आत्मा के प्रति चिंतन चल रहा तो उस चिंतन से भी हमारा हिसाब किताब बढ़ता जा रहा, और हम चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकता हो, परंतु दूसरी तरफ जब हम उस आत्मा के प्रति इतनी जगह अपनी बुद्धि में देते हैं जो उसी का ही चिंतन चल रहा, तो वो भी हमारा और ही सख्त हिसाब किताब बनता जा रहा चुकता होने के बजाय। तो बाबा का ये कहना था कि आप जब इस प्रकाश से चिंतन को फुल स्टॉप लगाएंगे और बाबा की याद में रहेंगे और मन में किसी आत्मा के प्रति कुछ और भावना न हो, केवल हर आत्मा का कल्याण हो बस, तो फिर उस आत्मा के साथ भी आपका जो हिसाब किताब था वो जल्दी चुक्त हो जाएगा। तो जबकि हमें देवता बनना है, देने वाले बनना है, तो हम ये कभी भी मन में किसी से एक्सपेक्टेशन न रखें कि इनसे हमें कुछ मिले और फिर हम आगे बढ़ सकते। नहीं, हमको किसी से भी कुछ जरूरत ही नहीं है, जबकि बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। आप देखेंगे कि एक विशेष गुण बाबा का कई बारी अव्यक्त मूल्यों में, चाहे ब्लेसिंग्स में आता चाहे मूल्यों में आता, वो है संतुष्टता के ऊपर। और ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब आत्मा बाबा से जो बाबा दे रहे हैं उसको हम लेकर के अपने पास समा कर रखते हैं और औरों के साथ भी शेयर करते हैं, तो वो हमारा भी खजाना बढ़ता जाता है। तो उसमें जब आत्मा संतुष्ट है तो आत्मा की संतुष्टता से हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं किसी से हमें कुछ लेना है। जो कुछ लेना था बाबा ने हमें दे दिया, और यदि कुछ और अभी तक रहा हुआ है वो भी बाबा हमें देने के लिए तैयार है। परंतु हाँ, आजकल की मुरलियों में ये भी बाबा हमें इशारे दे रहे हैं कि आप ये मत समझो कि बस समय इन्फिनिट है, समय आगे चलता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु अब प्रैक्टिकल संसार की हालतें देख रही हैं, तो वो देख करके और फिर ये भी देखें कि जो 350 अपने पास दादियां या दादा थे, अभी बाकी आकर के बचे हैं 3, तो उससे भी हम अंदाज लगा सकते हैं कि यज्ञ की स्थापना के कार्य में बाकी कितना समय होगा। और विश्व की हालत का तो समाचार आप लोगों को मालूम ही है। तो यदि अभी तक हम लेने का कुछ संकल्प रखते हैं, तो फिर कौन सी घड़ी आएंगी जब हम कहेंगे हाँ बाबा सचमुच जो कुछ आप देने चाहते थे हमने प्यार से स्वीकार करके अपने मुंह धारण करके हमने अपने को भरपूर किया। और यदि अभी हमारे जीवन में संतुष्टता है तो हाँ हम देने वाले देवता का स्वरूप धारण कर सकते। परंतु साथ ही साथ ये जो खास शब्द आता है अहिंसा का, फिर हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति किसी को हार्म करना तो क्या, किसी के प्रति कुछ भी हम संकल्प नहीं चला पाएंगे, तो अहिंसा हमारे जीवन से वो नजर आएंगी। और फिर साथ साथ एक और विशेष गुण लगता है कि बहुत ही आवश्यक है, यदि हम अपना फरिश्ता स्वरूप अपना देवता स्वरूप सामने रखते हैं तो बुद्धि के सामने वही विजन है, वही नक्शा है, तो फिर उसमें मुझे लगता है सत्यता एक बहुत मुख्य बात आती। जबकि देवताओं के लिए तो कहेंगे कि वो सत धर्म के मालिक थे, सत्युग के मालिक थे। सत्युग के लिए भिन्न भिन्न नाम आते हैं, परंतु सबसे अच्छा नाम ये मुझे लगता है सत्युग, सत्यता का युग। जिस रीति से कलयुग में काल का युग, और देख रहे हैं कि बिल्कुल काल सब तरफ खड़ा ही है, परंतु सत्युग का मेन नाम ये सत्यता के ऊपर आधारित। तो कहां तक हम सत्यता को समझ कर और जीवन में वो धारण करके चलते आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आज के युग में कहती हैं पोस्ट ट्रूथ, ये हमारे शब्द नहीं है, ये कलयुग वाले लोगों ने ही ये शब्द निकाला है कि सत्यता छूट गई और अभी बाकी उसके बाद का युग चल रहा। तो यदि बाहर वाले भी मानते हैं, कि ये बिल्कुल आज के समय बाहर में तो कुछ सत्यता रहा ही नहीं, इतना तक जो देश को चलाने वाले, बड़े बड़े देशों को चलाने वाले, उनके अंदर तो कुछ सत्यता की मार्जिन ही नहीं रही, इतना सब तरफ झूठ ही झूठ। परंतु बाबा के संसार में जब आज हम सत्यता के मार्ग पर चलकर अपना देवता स्वरूप धारण करेंगे, तो फिर विश्व के सामने वो प्रत्यक्ष रूप होगा कि हाँ, ये भगवान का कार्य है। तो सत्यता तो एक तरह से बहुत बहुत ऊंची स्थिति की बात है, परंतु जब भगवान सत्य है और भगवान सत्य को ही भगवान मानते हैं और हम कहेंगे कि वो तो हमारा बाप है, इतना समीपता का संबंध है जो हम बहुत हल्के रीति से कहते हैं कि ये तो हमारा बाप है, ऊंची से ऊंचा भगवान है, ये तो है ही, तुम तो हमारा बाप है। तो जब हमारा बाप सत्य है तो हमेशा कहा जाता है कि सन शोज फादर। तो जब हमारे जीवन में इतनी सत्यता होंगी मन वचन कर्म में, तो फिर लोग भी मानने लगेंगे कि हाँ, ये सत्य धर्म की स्थापना करने वाले, सत्य को लाने वाले, सत्य बाप के बच्चे सचमुच है। तो मन में पहले कोई न कोई प्रकार का झूठ आता, परंतु मन में भी कभी कभी कुछ डर के मारे झूठ आता। तो हम देखे कि जबकि बाबा ने हमें अपना साथ और हाथ दिया है, तो डरने की तो रियली कोई बात ही नहीं है। गीत भी ऐसे बने हुए हैं, परंतु रियलिटी किस बात का हम डर न रखें, परंतु एक बात का डर बाबा कहते कि भले रखना, वो है धर्मराज का। परंतु आज यदि हमने अपना पूरा हिसाब किताब बाबा के सामने हर रोज रात्रि को वो अकाउंट की रीति से रखा है और बाबा को हमने धर्मराज को अपना फ्रेंड बना लिया है, तो फिर उससे भी कोई डरने की बात नहीं। परंतु हम ये देखें कि वो जो लक्ष्य है सत्यता का, सत धर्म की स्थापना के कार्य के लिए, और आज अपना मन वचन कर्म किस प्रकार से चल रहा है, दोनों का हम कंपैरिजन करें। जब बाबा साकार में थे तो बाबा ट्रांस मैसेंजर्स को कहते थे, जो ध्यान में जाने वाले बहने थी, आप वतन में जाकर के ये देख के आओ कि इस बाबा का और उस संपूर्ण बाबा का क्या फर्क है। तो वो आकर के बाबा को बताते थे कि हाँ बाबा, अभी इतना फर्क है, अभी इतना फर्क है, अभी इतना फर्क है। तो बाबा बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनते थे और फिर पुशारत भी ऐसे करते थे कि जो फर्क हो वो बिल्कुल निकल जाए। तो अंतिम वर्ष में तो संदेश यहाँ आकर के बताती थी कि इस बाबा और उस संपन्न बाबा में कुछ फर्क नहीं नजर आता था। तब सभी कहते हैं कि बाबा बिल्कुल साकार में होते ही अव्यक्त नजर आते थे, परंतु बाबा ने लक्ष्य रखा, बाबा के सामने वो बिल्कुल विजन रहा कि मुझे वो संपूर्ण ब्रह्मा की स्थिति, फरिश्ते ब्रह्मा रूप को धारण करना है। तो यदि हम भी अपने सामने अपना फरिश्ता रूप, अपना देवता रूप सामने रखेंगे, तो फिर पुरुषार्थ उस लेवल पर चलता रहेगा। और लास्ट बात मुझे ये बतानी है कि एक तो बिल्कुल अहिंसा का रूप जिसमें संतुष्टता का गहरा संबंध आता, परंतु फिर दूसरी बात सत्यता, और तीसरी बात भगवान को सत्य और प्रेम कहा जाता। सत्यता को भी कहेंगे भगवान है, इसी तरह से प्रेम को भी कहेंगे भगवान है। तो जबकि देवता स्वरूप को याद करते हैं या एंजल स्वरूप को भी याद करते हैं, तो दोनों में वो परमात्मा के प्रति प्रेम, परंतु साथ ही साथ सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति भी प्रेम। थोड़ा समय पहले जब मैं रोम में गई थी, वहां पर एक यूएन की संस्था है जो फूड और एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है, तो पहले वो चित्र नहीं था, परंतु जब मैं लास्ट टाइम गई थी 2 साल पहले, तो एक नया स्टैच्यू उन्होंने एंट्रेंस में रखा हुआ था। तो वो कौन सा था? कहते हैं कि जब एंजल्स भी आज के संसार के हालत देखते हैं, तो उनके आंखों में भी प्रेम के आंसू आती हैं। वो प्रेमवश चाहती हैं कि मानव को कुछ वो मदद करे। तो चाहे एंजल के स्वरूप में ऐसे हमारे दिल में प्रेम हो जो हमारे मन में और कोई भावना न हो, केवल यही कि हम सर्व आत्माओं के लिए कुछ न कुछ मनसा सेवा करे, कुछ वाचा सेवा करे, कर्मना सेवा करे, जिससे वो आत्माएं भी बाबा के नजदीक आए। और फिर देवताओं का तो है ही वो प्रेम स्वरूप। तो हम 3 बातें ये याद रखें, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम एंजल जल्दी बन जाएं, देवता स्वरूप धारण करें, तो वो कार्य बाबा हम लक्ष्य रखते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो बाबा की मदद अवश्य ही मिलती है, वो प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन ही जाता। ओम शांति।
न्यारे नजारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, कहते हैं जन्नत जिसे वो जमी पर आएगा, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं,